ओम शांति, ओम शांति। हमारा मंत्र ही है ओम शांति। ओम शांति बोलते ही अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है, और जैसे ही स्मृति आती है वैसे ही स्थिति भी बनती है। तो इसीलिए हमारी आदरणीय दादी जानकी जी 3 बार हमेशा ओम शांति बुलवाते थे। एक ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरी ओम शांति, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। और तीसरी ओम शांति, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। तो हमारी शांति का आधार ये स्मृति है। आज दुनिया में लोग शांति चाहते हैं, जैसे आपने भी हाथ उठाया कि कहीं ना कहीं हम अशांत थे इसीलिए हम बाबा के घर में आए। तो दुनिया में भी बहुत आत्माएं हैं जो अशांत हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो उनके व्यक्तिगत जीवन के हैं, चाहे वो उनके संबंधों से हैं, चाहे वो अपने जीवन की परिस्थितियों से हैं, और फिर शांति ढूंढते हैं। शांति ढूंढते हैं वो गुरु के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मिलती भी है तो अल्पकाल की शांति मिलती है, क्योंकि शांति के स्रोत से उनका संबंध नहीं है। और हमारी शांति ऐसी है कि हम अशांति में भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थितियां, जो परिस्थितियां दुनिया के सामने आती हैं, वो हम बाबा के बच्चों के सामने भी आती हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में रहते हुए भी हम शांत रह सकते हैं, ये बाबा ने हमें शक्ति दी। एक बार एक राजा था, वो चित्रकला का शौकीन था। तो समय प्रति समय वो अपने राज्य में वो चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करता रहता था। तो एक बार उसने प्रतियोगिता आयोजित की शांति विषय पर। तो काफी उसके राज्य में जो चित्रकार थे उन्होंने शांति के विषय को लेकर सुंदर सुंदर चित्र बनाए, और सारी पेंटिंग्स उसके पास आ गई, जैसे गैलरी में सजाते हैं उनको। पर उनमें से 2 पेंटिंग्स चुनी गई इनाम के लिए। अब इन 2 में से फाइनल होना था कि फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा। तो एक पेंटिंग थी जिसमें प्रकृति का शांति का दृश्य दिखाया था। एक लेक है, वो बिल्कुल शांत है, पानी में भी कोई हलचल नहीं। पेड़ पत्ते जो पौधे हैं वो भी बिल्कुल जैसे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऐसे खड़े हैं। और रात्रि का समय है, पूरा चांद आसमान में निकला हुआ है। तो एकदम जैसे शांति का अनुभव हो रहा था उस चित्र को देखते हुए। और दूसरा चित्र इसके ऑपोजिट था, जो लेक का पानी था उस पर लहरें दिखाई दे रही थी, पेड़ पौधे जो हैं वो पत्ते हिल रहे हैं, लगता था कि कोई जैसे तूफान आया हुआ है। पर उसमें एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में जो बच्चे थे उनको दाना खिला रही है। बच्चों के सामने की डाली पर बैठकर बच्चों के मुंह में दाना डाल रही है। तो लोगों को थोड़ा सा विचार चला कि इसमें क्या शांति का दृश्य है, ये चित्र तो ऐसे है जैसे कि सब हलचल में है। तो दूसरे दिन उसका निर्णय होना था, तो सबने सोचा देखते हैं क्या निर्णय करते हैं राजा। तो राजा ने प्रथम पुरस्कार के लिए उस पेंटिंग को चुना जिस पेंटिंग में चिड़िया बच्चों को दाना खिला रही है। उसको पहला पुरस्कार मिला तो सबके मन में प्रश्न उठा, यहाँ इस चित्र में तो कोई शांति है ही नहीं, राजा ने कैसे इसको चुन लिया। तो राजा अभी सबके मन को समझ गए, तो फिर उन्होंने स्वतः ही सभा में कहा कि आपको ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने क्यों इस चित्र को प्रथम पुरस्कार दिया। आप देख रहे हैं इस चित्र में कितनी हवा है, कितना तूफान है, लेकिन उस तूफान की भी ये चिड़िया परवाह नहीं कर रही। ये अपने बच्चों को, क्योंकि उसे दाना खिलाना है, तो वो अपने बच्चों को बिना उसकी परवाह के दाना खिला रही है, कितना शांति से अपना काम कर रही है। तो ये सच्ची शांति है। शांति की स्थितियों में शांत रहना वो तो सामान्य बात है, लेकिन अशांति की स्थिति में भी शांत होकर के अपना कार्य करना, उसे हम शांति कहेंगे। तो बाबा ने हमें वो शक्ति दी है जो हमारा यादगार चित्र है, विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने याद किया ना, शीर्ष सागर में विष्णु लेटे हुए हैं। तो परिस्थितियां कैसी ही दिखाई हैं सागर में, कोई सचमुच कोई विष्णु शीर सागर में लेटे हुए तो नहीं होते, लेकिन ये तो यादगार हमारे ही चरित्रों की है। तो सागर में लहरों की हलचल रहती ही है, और उसमें भी शैया है सांप की, और छत्र छाया भी सांप का फन है ना। तो इसका मतलब प्रकृति पर विजय, जल प्रकृति का प्रतीक है और सांप पांच विकारों का प्रतीक है, पांच फन दिखाते हैं ना उसके, तो पांचों विकारों पर भी विजय पाते हुए ऐसी स्थिति में भी विष्णु जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, अपने आनंद में हैं, उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो बाबा कहता है कि अंतिम समय की जो स्थितियां होंगी वो इस प्रकार की ही होंगी, सब तरफ से हलचल में लाने वाली तमोगुणी आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस होंगे, अपने भी पुराने संस्कार इमर्ज हो सकते हैं, या जो भी खूने नाहक खेल के दृश्य होंगे उस समय उनके वाइब्रेशन से भी अपने को सेफ रखना है। फिर कुछ जो इविल सोल्स होंगी, क्योंकि बहुत अकाले मृत्यु होगा, अकाले मृत्यु होंगे तो इविल सोल्स ऐसे भटकती हुई आत्माएं, उनको भी सहयोग देना, मुक्ति देना और उनसे अपने आप को सेफ भी रखना, या कोई दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार भी हो सकता है कि वो हमारे में हलचल लाने वाले हों, उस सब में होते हुए भी मन एक की याद में एकाग्र हो, शांति की स्थिति में हो, इतनी हमारी मनसा पावरफुल होगी तब हम ऐसे सेवा कर पाएंगे, तब हम कहेंगे कि वो शांति की शक्ति हमारे अंदर है, हम पास विद ऑनर हो सकेंगे। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ऐसा नहीं कि अंत में हम अपनी स्थिति बना लेंगे, नहीं तो होगा कि हम सोचेंगे मैं आत्मा हूँ और वो आत्मा की बिंदी टिकेगी नहीं, क्योंकि सब खींचने वाली परिस्थितियां, मन को हलचल में लाने वाली परिस्थितियां, तो उसमें अगर हम क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ना हम, अगर हम क्यों कैसे क्या में चले गए, तो बाबा ने कहा फिर हम पास नहीं हो सकते। और मनसा सेवा हमारी जो है वो मनसा सेवा सब दूर बैठी आत्माओं के लिए सकाश देने की सेवा की विधि बाबा ने हमें दी है। हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, विश्व सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं, तो मनसा सेवा भी हम तब कर सकते हैं जब शांति की शक्ति हमारी जमा है। अगर हमारे मन में ही शांति, सुख, प्रेम, शक्ति नहीं है तो हम आत्माओं को वो सकाश नहीं दे सकते। मनसा सूक्ष्म सेवा है ना, क्योंकि संकल्प की शक्ति सूक्ष्म शक्ति है तो वो हमें तो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य अदृश्य शक्ति है हमारी जो मनसा शक्ति है, लेकिन पावरफुल है। जितना सूक्ष्म होता है उतना वो पावरफुल होता है। आज हम देख रहे हैं कि साइंस के साधन जितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं उतने ही वो पावरफुल होते जा रहे हैं। बहुत सारे साधन हैं जिनके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूं, मानो आज हम एक छोटा सा वो एसडी कार्ड यूज करते हैं या मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, है ना। जब शुरुआत हुई तो क्या था, ग्रामोफोन था, इतना बड़ा सा वो लगाना पड़ता था, है ना, और एक ही गीत होता था उसमें। फिर उसके बाद कैसेट्स आ गए तो छोटा रूप हुआ और कुछ ज्यादा गाने, जितना छोटा रूप हुआ उसमें गानों की संख्या 7-8-10 गाने उसमें हो सकते थे, या जो भी रिकॉर्डिंग होती थी वो आधा घंटा की रिकॉर्डिंग होगी। फिर और आगे बढ़े तो सीडी आई, तो उसमें कैपेसिटी बढ़ गई। अब केवल आधे घंटे की बात नहीं, आप कई घंटों तक उसको चला सकते हैं, और डिपेंड करता है कितनी उसकी मेमोरी है, उतने अनलिमिटेड गीत उसके अंदर, कुछ लिमिट तो कुछ अनलिमिटेड। फिर केवल गीत नहीं, वीडियो भी हो सकते हैं, है ना, तो मल्टीपर्पज हो गया, उसकी वो पावर बढ़ गई। और फिर उसके बाद आए पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव उससे भी कितना छोटा, हाथ में पकड़ लो आराम से, और मेमोरी कितनी, जितने जीबी की वो पेन ड्राइव है उतना जीबी आप डेटा डाल लो उसके अंदर, फिर कुछ भी डाल लो, है ना, वीडियो डाल लो, ऑडियो डाल लो, फोटो डाल लो, रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं उसको। और अब उसका भी और छोटा रूप, हाँ, वो एसडी कार्ड जो है कितना छोटा सा, जैसे आत्मा कहता है, बाबा कहता है कि आत्मा इतनी छोटी सी सूक्ष्म है और उसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, हाँ, तो कुदरत कहता है बाबा इसको। तो अब हमें वो समझ में आती हैं बातें कि जब साइंस इतना छोटे से उसमें इतना ज्यादा डेटा डाल सकती है, अब वो एसडी कार्ड 124 जीबी तक भी हो सकता है, हाँ, इतना उसमें डेटा भरा जा सकता है, साइज उतना ही होता है, साइज नहीं बढ़ जाता उसका। और मल्टीपर्पज यूज है, केवल एक यूज नहीं है उसमें अभी, है ना, तो कितनी पावर बढ़ गई, जितना छोटा हुआ उतनी पावर बढ़ गई। तो इसीलिए एटॉमिक वेपन्स भी हम देखते हैं कि कितना सूक्ष्म रूप में एटॉमिक वेपन्स है लेकिन पावर कितनी ज्यादा है। तो फिर बाबा हमेशा कहते हैं कि ये साइंस की पावर भी कहां से निकली है, साइलेंस पावर से निकली है ना। साइलेंस में रहकर के जो वैज्ञानिक हैं वो इन्वेंशंस करते हैं, तब जाकर के संसार को इतने सुख के साधन मिलते हैं। तो मनसा सेवा के लिए बाबा कहता है जो विधि है, हमारी मनसा शुभ होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए और सदा ही निस्वार्थ होनी चाहिए। हमारे में सदा दूसरों के प्रति उपकार की भावना हो, कल्याण की भावना हो, क्योंकि ये शुभ भावना शुभ कामना की सेवा है। यानी हमारे भाव और भावना वृत्तियां शुद्ध और शुभ हों, तब मनसा सेवा काम करती है। सदा हम रहम दिल हों, आत्माओं के प्रति दातापन की भावना हो, स्वपरिवर्तन से हम परिवर्तन करें, ऐसे नहीं कि दूसरा भी तो कुछ परिवर्तन करे, अगर हमने इतना किया है तो दूसरा भी कुछ करे, नहीं। लेकिन हम जब मनसा सेवा करते हैं तो कई बार इस विधि को हम भूल जाते हैं। हम आत्माओं को सकाश देते हैं और कई बार विशेष आत्माओं की हम सेवा करते हैं जो हमारे संबंध संपर्क में हैं, हमारे मित्र हैं, और उनकी ज्यादा जो किसी भी तरह से थोड़े हमारे विरोधी हैं या हमारे लिए विघन रूप बनते हैं, ताकि वो हिसाब किताब हमारा खत्म हो जाए। तो जब हम योग करते हैं तो उस समय तो हम उनके प्रति अटेंशन दे करके शुभ भावना रखते हुए सकाश देते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन जब हम योग में नहीं हैं और उसके बाद उनका चिंतन हमारे मन में आता है, तो फिर उनका जो व्यवहार है हमारे साथ उस अनुसार ही हमारे विचार वृत्ति नेगेटिव हो जाती है उनके प्रति, और फिर हम सोच रहे होते हैं कि इतना समय से हम इनकी मनसा सेवा कर रहे हैं लेकिन परिणाम तो नजर आता नहीं। जो शुभ संकल्प हम उनके प्रति रखते हैं वो तो संकल्प सिद्ध हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं सिद्ध हो रहा है? क्योंकि हमारी भावनाएं बदल रही हैं। हमेशा सदा मेरी शुभ भावना रहे ऐसा हम नहीं कर पा रहे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा है, उसके प्रति मेरी भावना शुभ होनी चाहिए। नॉर्मली तो जिनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, जो हमसे स्नेह रखते हैं उनके प्रति हम भी रखते हैं, तो वो तो अज्ञानी लोग भी रखते हैं। लेकिन जिनकी हमारे प्रति नेगेटिव भावनाएं हैं या हिसाब किताब है, उनके प्रति शुभ भावना रखना, ये हम कहेंगे हमारी शांति की शक्ति है, श्रेष्ठ भावना की शक्ति है, वो तब कार्य करेगी। और फिर हमारी मनसा शक्तिशाली भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम योग लगाते हैं बाबा से, वो शक्ति जमा करते हैं, लेकिन साथ साथ वो शक्ति थोड़ा थोड़ा व्यर्थ संकल्पों में जाने के कारण या पर चिंतन में जाने के कारण हमारी वो शक्ति वेस्ट भी होती रहती, जिसको बाबा कहते हैं लीकेज भी होती है। तो वो अलग अलग प्रकार के पावर के बल्ब हम कहते हैं ना, कि मेरी मनसा कितनी शक्तिशाली है, वो कहाँ तक उसका प्रभाव जाएगा, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो हो सकता है कि वो मेरे रहने के स्थान तक हो सकता है कि वो मेरे एरिया तक हो सकता है वो मेरे शहर तक हो, ये भी हो सकता है कि पूरा देश तक या विश्व तक। तो जैसे हम लाइट में देखते हैं कई प्रकार के पावर के बल्ब होते हैं, 0 वॉट का बल्ब भी हम यूज करते हैं। 0 वॉट का बल्ब बहुत हल्की रोशनी होती है, सिर्फ आप कुछ देख सकते हैं, काम नहीं कर सकते इतनी कम रोशनी में। फिर दूसरा 100 वॉट का बल्ब है तो हम उस रोशनी में काम भी कर सकते हैं, एक पूरा कमरा रोशन होता है उससे। और अगर हमें मैदान को रोशन करना है तो हम फ्लड लाइट लगाते हैं, माना 1000 वॉट की रोशनी होती है उसकी, पूरी मैदान को वो रोशन कर देता है। और एक लाइट हाउस है जो माइलों तक उसकी रोशनी जाती है और आने वाले जहाजों को वो दिशा देता है ना। और एक सूर्य है, वो सूर्य पूरे विश्व को ही प्रकाश दे रहा है ना? तो मेरी मनसा स्थिति कैसी है, मनसा शक्ति कितनी है? 0 वॉट की है, 100 वॉट की है, 1000 वॉट की है, या लाइट हाउस हूं मैं या मास्टर ज्ञान सूर्य हूं? तो जितना पावरफुल हम होंगे उतना ही सहज हम विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हैं, तभी हमारी वो मनसा सेवा सफल होगी। तो अब हमारी मनसा कमजोर क्यों हो जाती है? उसका कारण है, या तो हम पास्ट की बातों में उलझे रहते हैं, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो चलता ही है, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, क्यों किया, क्या बोला, क्यों बोला। बहुत ज्यादा कईयों की आदत होती है कि वो पास्ट को बहुत सोचते हैं, कुछ भी हो गया, जरा भी उनको किसी ने दुख पहुंचा दिया, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ कर दिया, फीलिंग में आ जाते हैं। और फीलिंग में आ गए माना उस फीलिंग से बाहर आने में कई बार दिन लग जाते हैं, कई बार महीनों तक वो मन में चलता रहता है। तो मनसा हमारी कमजोर होती है क्योंकि हमारी शक्ति वेस्ट होती रहती है। फिर विकारों के संकल्प अगर चल जाते हैं मन में, है ना, वैसे स्थूल रूप में हम निर्विकारी स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विकारों के अंश वंश का प्रभाव, तो मानो लगाव झुकाव में कहीं मन चला जाता है। कोई एक या दो ऐसे हैं हमारे जीवन में जिनसे हम थोड़ा ज्यादा समीप हैं और वो हमारी जिंदगी के हर उसमें हस्तक्षेप रखते हैं, तो उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, हम उन पर ही निर्भर हो जाते हैं। जैसे हाँ, जिसको बाबा फैमिलियरिटी भी बोलता है, कि इतना हम अपनेपन में आ जाते हैं कि फिर बाबा की याद की जगह कौन आ रहा है, बाबा की याद की जगह हम ज्यादातर उनकी यादों में रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं एक्स्ट्रा स्नेह में चले जाते हैं। वैसे कोई काम विकार नहीं है, लेकिन इसको लगाव झुकाव, है ना, झुकाव है उस आत्मा के प्रति तो लगाव हो जाता है। तो हमारा योग तो कमजोर हुआ ना, उस आत्मा से मेरे कर्म का हिसाब किताब बना, तो मेरा योग तो कमजोर हुआ, तो मेरी मनसा पर उसका असर आएगा। फिर कई बार हम क्रोध नहीं करते हैं लेकिन नाराज हो जाते हैं, नाराज होते हैं तो व्यर्थ संकल्प करते हैं उस आत्मा के प्रति, थोड़ा सा मन में घृणा भाव, कई बार थोड़ा वैर भाव भी पाल कर रखते हैं, ये सब भी हमारी मनसा को कमजोर बनाते हैं। तो जितने नेगेटिव संकल्प चलेंगे उतना कई गुना मेरे मन की शक्ति नष्ट होती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं सब कॉन्शियसली मेरा मन अपनी शक्ति को कम कर रहा है। जैसे एक बाल्टी में मैं पानी भर रही हूं पर नीचे होल है, तो पानी तो ऊपर से भर रहा है, नीचे से निकल रहा है, तो बाल्टी भरती ही नहीं है। तो यहाँ भी अमृत वेला भी हम कर रहे हैं, मुरली भी हम सुन रहे हैं, कर्म योगी बन करके भी हम कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन लाइट हाउस की तरह हो, इतना शक्तिशाली हो वो नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीकेज, वो होल है। तो मन समर्थ बने उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, जो हम मुरली बाबा की सुनते हैं उस मुरली को केवल सुनना नहीं है, तो मुरली केवल हमें सुनना नहीं है लेकिन मुरली हमें समाना है। एकाग्रता से हम बाबा की मुरली सुने, सेंटर के वातावरण में मुरली सुने, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अपने घर में भी सब साधन है, अभी तो मुरली आसानी से मिल जाती है, तो हम घर में ही बैठ करके मुरली सुन लेते हैं। लेकिन घर में मुरली सुनना और सेंटर के वातावरण में मुरली सुनना, अंतर पड़ता है नहीं पड़ता है? कोरोना के समय सबने अनुभव किया है ना, घर में ही बैठकर सुननी पड़ती थी, ना सुनना चाहो तो भी घर में ही सुननी पड़ती थी। तो कैसे सुनते हैं, सुन भी रहे हैं साथ साथ काम भी कर रहे हैं, किसी ने आकर मेरे से बात की तो थोड़ा बात भी कर लिया, किसी ने कहा कि ये काम है रसोई में ये देख लो जरा, वो भी देख लिया, फिर घंटी बजाई किसी ने दरवाजे पे तो घंटी भी जाकर सुन ली, खोल लिया दरवाजा, फिर फोन बज गया तो फोन भी अटेंड कर लिया, मुरली भी चल रही है। अब चार बार आप डिस्टर्ब हो गए मुरली सुनते हुए, तो कितना अंदर गया, और अब जब हमें सेंटर पर जाने का फिर से अवसर मिल गया है तो फिर हमें सेंटर पर ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अब हमारी आदत पड़ गई घर में बैठकर मुरली सुनने की तो ठीक है, गुरुवार चले जाएंगे, रविवार चले जाएंगे, बाकी दिन घर में ही मुरली सुन लो। तो क्योंकि वो हम सब बातों से फ्री होकर के एक घंटा मुरली सुनते हैं और हमारे सामने जो सुनाने वाले हैं वो भी उस स्थिति से मुरली सुनाते हैं तो उसका प्रभाव अपना होता है। जैसे मधुबन में आते हैं हम अनुभव करते हैं कि मधुबन में जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव अपना होता है, अपने स्थानों पर हमारी स्थिति अलग होती है। तो इसीलिए मन में फिर केवल सुनना नहीं, उसका मनन भी करना है, चिंतन भी करना है, क्योंकि सदा ही श्रेष्ठ संकल्प में मन रहे वो तो तभी होगा ना जब हम मुरली का मनन चिंतन करेंगे, बाबा ने आज ये बात कही ना, इस बात में कितनी गहराई है, या एक नई बात बाबा ने नया राज खोला, या इस पॉइंट को अगर मैं इस परिस्थिति में यूज करूंगी तो सचमुच ये मुझे विजयी बनाने वाली है, और इस बाबा की बात से तो मेरा मन शांत हो गया, मेरे मन में शक्ति आ गई, तो ऐसे ऐसे उसको लेकर के हम चिंतन करें। फिर कई बार कई भाई बहने कहते हैं चलता ही नहीं है मनन, बहुत सोचते हैं कि मुरली का मनन करें लेकिन दिमाग चलता ही नहीं है। अच्छा चलो मनन नहीं चलता है, फिर कुछ कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी रहते हैं अभी कहाँ मनन करेंगे, बस एक बार मुरली सुन ली वो भी बहुत हो गया। तो मानो हमको टाइम नहीं मिलता है या हमारा दिमाग मनन में नहीं चलता, पर हम मुरली रिवाइज तो कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, तो फिर जितना समय मिले, आज तो रिवाइज करना भी मुश्किल नहीं है ना, हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में मुरली होती है, तो और सब देखने की बजाय पहले मुरली रिवाइज करो, आज बाबा ने मुख्य बातें क्या कही, जब वो स्मृति में रहेगा तभी तो वो कार्य व्यवहार में आएगा। जो बात मेरी स्मृति में नहीं है वो मेरे कर्म में कभी आ सकती है। हाँ, जैसे हमने दादी जी को देखा, हम सुनते भी हैं बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी के बारे में, दादी चार बार मुरली पढ़ते थे, एक ही मुरली को चार बार पढ़ना, अब इतने समय से ओम मंडली के समय से दादी मुरली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना महत्व था उस मुरली का दादी को लास्ट तक भी कि वो इतनी बार मुरली पढ़ते थे। तो अगर चार बार मुरली पढ़ेंगे तो वो मुरली याद होगी या नहीं होगी, और इसीलिए हम देखते थे कि दादी बिल्कुल बाप समान थी, बाबा की शिक्षाओं का पूरा स्वरूप थे, वो संपन्न आत्मा थे। तो हमें भी मुरली स्मृति में एक बार में तो कितनी याद रहती है, अभी हम पूछें आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, हाँ? तो कितनी पॉइंट सुनाएंगे, एक दो, ज्यादा से ज्यादा तीन, इससे ज्यादा याद होगा किसी को, हाँ? अगर रिवाइज किया होगा तो याद होगा, अगर रिवाइज नहीं किया तो कई बार कहते हैं अच्छा चलो चार बार नहीं, दादियों को तो बाबा से बहुत प्यार था, कहते हैं ना मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो जानकी दादी तो छह छह बार तक भी पढ़ते थे, है ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मानो, तो हम कम से कम दो बार तो रिवाइज कर सकते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि जो रॉयल लोग होते हैं ना वो दो बार स्नान करते हैं, तो हम ये दो बार ज्ञान स्नान कर सकते हैं। सारे दिन में हमने जो भी कार्य किया, लोगों के संपर्क में आए, उसका असर तो हमारे मन पर आ जाता है ना। मन कमजोर कैसे होता है? इसी के कारण होता है ना। जो तमोगुणी वाइब्रेशंस का असर मेरे मन पर आ गया, इतनी आत्माओं के हम संपर्क में आए, या जो हमने कार्य किए, कहीं ना कहीं हम मैंपन मेरेपन में आ जाते हैं, जैसे कहा, तो फिर वो सारे प्रभाव जो पड़ गए, जो मैल चढ़ गई मेरे मन पर, फिर मैंने शाम को फिर से ज्ञान स्नान कर लिया, फिर से हमने मुरली रिवाइज कर ली, तो क्या हो गया? वो सब धुल गया, माना फिर से मेरा मन शक्तिशाली हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम योग करें, तो हम पावरफुल मनसा से जब योग करेंगे, तब हम जो सकाश फैलाएंगे उसका प्रभाव पूरे विश्व तक जाएगा, या जो भी आत्माओं की हम सेवा करना चाहेंगे वो हम कर सकेंगे। फिर चाहिए एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता के लिए बाबा कहते हैं, एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए। एक शुद्ध संकल्प में, मानो मैं संकल्प करती हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरा मन उस शक्ति की स्थिति में जितना समय में चाहूँ, 10 मिनट 15 मिनट, वो एक संकल्प में रहे, इसको एकाग्रता कहते हैं। या अगर मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, या मैं मास्टर शांति दाता हूँ, ये सब बाबा ने हमें शुद्ध संकल्प दिए, जो भी सोमान है हमारे वो सब हमारे शुद्ध संकल्प हैं। तो ये शुद्ध संकल्पों में मन स्थित होता है, तो वो संकल्प में सिद्धि आ जाती है। या फिर योग की जो स्थिति में मैं मन को स्थित करना चाहूँ, अगर मैं परम धाम में अपने मन को स्थित करना चाहूँ कि आधा घंटा मन बाबा के साथ परम धाम में रहेगा, परम धाम से नीचे नहीं आएगा, तो हो सकता है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, भट्टी में आए हैं तो यहाँ तो हमको चांस मिल रहा है, पूरा एक घंटा हम योग में बैठते हैं, तो अपने मन को ट्रायल करके देखो, मन टिकता है कि नहीं टिकता है ना। कईयों की स्थिति ऐसी होती है, पहुंचते हैं परम धाम में, दूसरे ही सेकंड नीचे आ जाते हैं, फिर ले जाते हैं परम धाम में अपने आप को, फिर कोई ना कोई बात फिर नीचे खींच लेती है। तो वो चढ़ना उतरना, वो बाबा नहीं कहता है कि जो जिन होता है वो ये काम करता है, तो हमारा मन भी फिर यही काम करता रहता है, ऐसे नहीं। तो ये अभ्यास हमें करना है, और अगर हम अभी से वो करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन में वो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, कि हम जितना समय मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहें। आप फरिश्ता स्थिति में मन को स्थित करना चाहते हैं, मन फरिश्ता रूप में रहे, डबल लाइट स्थिति में रहे, अव्यक्त स्थिति में रहे, बिंदु रूप स्थिति में रहे, निराकारी विदेही स्थिति में रहे, जो स्थिति बनाना चाहें, लेकिन लंबे समय तक, तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर वो मनसा शक्ति बढ़ती है। आज जैसे हमने वैज्ञानिकों की बात की, तो कई लोगों में देखा जाता है, दुनिया में भी उनकी मनसा पावर इतनी होती है कि वो उससे चमत्कार दिखाते हैं, संकल्प की सिद्धि बोलते हैं ना बाबा। तो कुछ लोग दुनिया में ऐसे ही तो चमत्कारों से लोगों को प्रभावित करते हैं कि वो कोई ऐसा थॉट करते हैं और वो चीज हो जाती है, तो लोग प्रभावित होते हैं उससे। अभी हमारी दादी जी जब थी, दादी जानकी जी, उस समय एक साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था यूरी गैलर। तो उसके अंदर ये पावर थी कि अगर वो घड़ी को देख करके ये थॉट करेगा कि घड़ी बंद हो जाए, तो घड़ी बंद हो जाएगी। आप में से बहुत पुराने भाई बहने जो हैं वो जानते होंगे, नए भाई बहनों ने तो नहीं सुना होगा इतना। फिर अगर वो कार की चाबी पकड़ करके ये थॉट करे कि ये चाबी मुड़ जाए तो वो चाबी मुड़ जाती थी, और यहाँ तक कि वो अपनी हथेली में मूंग से मूंग अंकुरित भी कर देता था ना। जो मूंग हम दो दो तीन तीन दिन इंतजार करके अंकुरित करते हैं, वो संकल्प से अपनी हथेली पर रखकर उनको अंकुरित करके दिखा देता था। तो वो संपर्क में आया लंदन में अपने सेवा केंद्र से। तो फिर भाई बहनों ने उनका एक प्रोग्राम रखा दादी जी के साथ। लंदन में एक बड़ा हॉल है अल्बर्ट हॉल, वहां पर वो प्रोग्राम रखा गया। तो वहां उस कार्यक्रम में उसने अपना ये प्रदर्शन किया जो उसकी पावर थी। तो निश्चित है लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी पावर है इनके अंदर। और दादी जी ने थोड़ा राजयोग के बारे में बता करके योग अभ्यास कराया। तो जब दादी जी ने योग अभ्यास कराया तो पूरी सभा में, क्योंकि उस सभा में नॉन बीके ज्यादा थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, एकदम साइलेंस के अनुभव में चले गए सभी। और फिर उसने अपना अनुभव बताया, यूरी गैलर ने अपना अनुभव बताया कि मैंने जो दिखाया वो ठीक है, वो एक पावर है, लेकिन जो दादी जी ने योग कराया और जो शांति का अनुभव कराया, इसकी दुनिया को आवश्यकता है और ये शक्ति मेरे पास नहीं है, ये शांति का अनुभव मैं नहीं करा सकता हूँ, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये मेरे से भी श्रेष्ठ है। तो देखा, तो दुनिया को चमत्कार तो नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, शांति चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए, वो बाबा ने हमें दी। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार नहीं है योग में, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाता है, हम स्वयं का भी परिवर्तन करते हैं और अन्य आत्माओं को भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं सुख शांति की, शक्ति की, गुणों की, उनको भी हम सहयोग दे सकते हैं, उनके जीवन में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये पावर एकाग्रता से हमारे अंदर आती है। और एकाग्रता के बारे में हम सुनते हैं कैसे अर्जुन के अंदर वो एकाग्रता थी कि वो अपने लक्ष्य को भेद देता था, कैसा भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो। तो मन एकाग्र है तो हमारे लक्ष्य को हम सदा ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो सफलता हम ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में पाना चाहते हैं वो सफलता हमें मिलती रहेगी। फिर बाबा के साथ हमारा फुल कनेक्शन चाहिए। आज हम देखते हैं ये साइंस के साधन कैसे काम करते हैं। ये साइंस के साधन तब काम करते हैं जब पावर सोर्स से इनका कनेक्शन है। अगर बिजली चली जाए तो ये माइक नहीं चलेगा, ये वीडियो नहीं चलेगा, ये पंखे नहीं चलेंगे, लाइट नहीं चलेगी। तो हमारी भी मनसा कब वाइब्रेशंस फैला सकती है, जब हमारा बाबा के साथ पूरा कनेक्शन, वो पावर हाउस है ना, उसके साथ पूरा कनेक्शन और रिलेशन होगा। अगर हमें किसी भी आत्मा की मनसा सेवा करनी है तो यही विधि है कि बाबा से योग लगाया, बाबा में मन एकाग्र हुआ, जिसको बाबा एकांत भी कहता है, एक के अंत में खो जाना, और फिर हम उस आत्मा के प्रति वो शुभ संकल्प करें तो वो जरूर उस आत्मा तक पहुंचेगा। आज साइंस के साधन में हम देखते हैं टेलीविजन है, टेलीविजन कैसे दिखाता है, दूर के दृश्यों को समीप दिखाता है, कोई व्यक्ति कहाँ बोल रहा है और हमें लगता है हमारे सामने ही बोल रहा है, तो दूरी को समाप्त कर देता है ना, वो साधन ने दूरी को समाप्त कर दिया। तो ऐसे ही हम मन से आत्माओं के समीप अनुभव करेंगे और वो आत्माएं भी यही अनुभव करेंगी, भले वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका में है, मानो कहीं भी और भी कहीं हो, लेकिन बाबा से कनेक्शन जोड़ा, हमने उसको संकल्प दिया तो वो संकल्प उस आत्मा तक ऐसे ही पहुंचेगा कि जैसे हमने उससे सम्मुख आकर के बात की, जैसे हम अभी सामने सामने बात कर रहे हैं। और इससे आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रू रिहान करना, उनके संस्कार परिवर्तन करने की प्रेरणा देना, अगर कोई निराश है अपने जीवन से तो उसमें आशा का संचार कर देना, या कोई हिम्मतहीन है तो उसे हिम्मतवान बना देना, या कोई आत्मा रोगी है, हम स्वस्थ होने में भी तो मनसा सेवा से सहयोग देते हैं ना, खासकर जब हमारे कोई वरिष्ठ बीमार होते हैं, जैसे दादियां कभी ऐसी स्थिति में रही तो ब्राह्मण परिवार उनको मनसा सहयोग देते हैं, योग का सहयोग देते हैं। तो ये हम करते हैं, विश्व की आत्माओं के लिए भी करते हैं, और खास जो हमारे कोई समीप या हमारे सेंटर पे भी अगर कोई ऐसे किसी को है, कष्ट है या रोग है, तो उनके लिए भी हम वो योग का सहयोग देते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव हैं जिन्होंने इस प्रकार की सेवाएं की हैं, और ऐसे ऐसे प्रयोग वो करते रहते हैं। स्वयं के प्रति भी हम कर सकते हैं, दूसरों की बात तो है लेकिन अपने प्रति भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है अपने यहाँ जो हृदय रोगियों के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज एग्रेशन प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसमें यही सिखाया जाता है उनको कि राजयोग के अभ्यास से कैसे बावर से वो शक्ति लेकर के अपने हृदय जो ब्लॉकेजेस हैं उनको सकाश देना है, और संकल्प करना है कि वो सब नलियां खुल गई हैं, मेरा हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, हृदय स्वस्थ है, और वो हो जाते हैं स्वस्थ। एक साल के बाद जब उनकी रिपोर्ट कराते हैं तो बिना बाईपास सर्जरी के उनके ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। तो अपने ऊपर प्रयोग किया तो वो प्रयोग के भी परिणाम ऐसे बहुत से हैं। अभी समय की सीमा होती है तो हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकते। दूसरों के प्रति जो हम करते हैं, मेरा अनुभव रहा, काफी अनुभव है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रही, और हॉस्पिटल में तो ऐसे मरीज होते हैं जो कई बार बहुत सीरियस होते हैं। तो मैंने देखा, मैंने जिन भी मरीजों के प्रति बाबा की श्रीमद प्रमाण मनसा सेवा की, वो हमेशा मरणासन होते हुए भी वो ठीक हुए, तो ठीक हुए वो। तो इसका मतलब हम मनसा से हम किसके प्रति अगर ऐसे शुद्ध संकल्प रखते हैं तो सचमुच वो दुआएं काम करती हैं, जिसको बाबा कहते हैं दुआएं दवा का काम करती हैं। दवा तो है अपनी जगह, लेकिन जो दुआएं होती हैं वो भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं। तो मनसा सेवा के लिए हम कहेंगे कि मनसा सेवा, बाबा कहते हैं अंतिम समय की सेवा है, जब साधन काम करना बंद कर देंगे तब हम मनसा सेवा ही कर पाएंगे। और ये वो सेवा है जिसमें हमें चांस की जरूरत नहीं है कि हमें कोई चांस मिलेगा तभी हम ये सेवा कर सकते हैं। फिर मनसा सेवा हम बीमार हो तो भी कर सकते हैं, है ना, कोई बेड पर भी हो तो भी कर सकता है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अब स्थूल सेवा तो नहीं कर सकते, या वाचा सेवा तो मुझे आती ही नहीं, ज्ञान सुनाना तो आता ही नहीं, पर मनसा सेवा में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहा, चांस की प्रॉब्लम नहीं, प्लस बीमार है पर मन स्वस्थ होना चाहिए। फिर तीसरा, इसमें कोई विघ्न नहीं आता। दूसरी सेवाओं में तो स्वभाव संस्कार के विघ्न हो सकते हैं, नाम मान शान के विघ्न हो सकते हैं, तेरे मेरे के विघ्न आ सकते हैं, लेकिन इस सेवा में ये विघ्नों से भी परे की सेवा है। फिर प्रकृति की सेवा भी तो हम मनसा से करेंगे, प्रकृति को हमें सतो प्रधान बनाना है, तो हम ज्ञान सुना के थोड़ी प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे, अपने वाइब्रेशन से ही हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे। तो ये सेवा वो सेवा है। तो मनसा सेवा का अभ्यास जैसा समय समीप है अभी, उस समय की समीपता के अनुसार जो अचानक की परिस्थितियां जो कभी भी आ सकती हैं, आती भी रहती हैं और आ भी सकती हैं, वो हमें बढ़ाना है। पर क्या होता है कि ये सूक्ष्म होने के कारण हमारा इस पर ध्यान कई बार कम हो जाता है और स्थूल सेवाओं में हम अधिक समय लगाते हैं, अधिक समय देते हैं। बाबा तो यूं भी कहते हैं कि अगर हम कर्मणा भी करते हैं तो भी उसमें मनसा सहित कर्मणा करें तो फिर हमें डबल फल मिलेगा, मनसा भी और साथ में हम कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं। तो ये हम कहेंगे कि अपनी मनसा सेवा को हम अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाते जाएं, तो बाबा जो हमसे चाहते हैं, बाबा की उन आशाओं को हम सहज पूरा करेंगे। ओम शांति।
को प्यार